ओम शांति। बेहद की वैराग्य वृत्ति, अंतिम पुरुषार्थ योग तपस्या भट्टी का आज समापन सत्र है और आज हम सबके बीच में रिस्पेक्टेड रुपेश भाई जी आए हैं। हम दिल की गहराइयों से, कृतल ध्वनि से भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाई साहब, आगरा के इस संगठन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप 1992 से संस्था के संपर्क में आए। 1994 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवाओं के लिए समर्पित कर दिया। वर्तमान में आप संस्था के ज्ञान सरोवर कैंपस में अपनी सेवाएं देते हैं। भाई जी को हम विशेष रूप से पीस ऑफ माइंड पर अनेकों कार्यक्रमों में रूबरू होते रहते हैं, लेकिन मुख्यतः समाधान कार्यक्रम आप सब देखते होंगे। सूरज भाई जी के साथ हम रुपेश भाई जी का वाद संवाद सुनते रहते हैं, जिससे अनेकों आत्माएं लाभान्वित होती हैं। ऐसे ही संस्था में होने वाले राजयोग शिविर, भट्टियां, अनेकों कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें आप अपने गहन चिंतन के आधार से क्लासेज करवाते हैं, मेडिटेशन कमेंट्री करवाते हैं, जिससे अनेकों आत्माएं लाभान्वित होती हैं। आज हम सबके बीच में बहुत सुंदर विषय के साथ, समय की पुकार, हो जाओ तैयार विषय के स्पष्टीकरण के लिए भाई जी आए हैं। तो मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय रुपेश भाई जी से कि हमें समय की पुकार क्या है इस विषय को स्पष्ट करें। आदरणीय भाई जी।
ओम शांति। एक बहुत ही प्रचलित पौराणिक कथा है कि एक बंदर और बंदरी पेड़ पर बैठे हुए थे। समय की आवाज आई, आकाशवाणी हुई कि बहुत ही शुभ वेला है, पवित्र वेला है और हजारों सालों में ऐसी वेला कभी कभी आती है, इस क्षण आई है। और ये ऐसी अमूल्य वेला है कि इसमें जो भी वृक्ष से कूदेगा, जो वृक्ष पे बैठा हो, वो राजकुमार राजकुमारी बन जाएगा। बंदरी ने बंदर से कहा कि कितनी अच्छी बात है, आपने सुनी ये दिव्य आवाज समय की, चलिए कूद पड़ते हैं। कहां हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाते रहते हैं, बारिश होती है, भीगते रहते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। इतनी अच्छी बात है कि हम कूदें और राजकुमार राजकुमारी बन जाएं, जीवन का आनंद लें, धन हो, वैभव हो, मान हो, सम्मान हो। कि इतना जल्दी बंदर को यकीन नहीं हुआ। यकीन नहीं होता ना कई बार, उसने कहा ऐसा थोड़ी होता है, इतने ऊंचे पेड़ से कूदेंगे तो किसी ने मजाक किया हमारे साथ। मंत्री ने कहा नहीं, मुझे तो विश्वास है इस आवाज पे, मैं कूदती हूं। कूद गई बंदरी और राजकुमारी बन गई है ना। अब बंदर ने देखा ये तो राजकुमारी बन गई, अब ये मेरे साथ तो पेड़ पे रहेगी नहीं राजकुमारी पेड़ पे थोड़ी रहेगी, वो तो महल में रहेगी, है ना। बंदर भी कूदा, क्या हुआ? बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक गाथा जो प्रेरित करता है, समय की महत्ता को बताता है कि सुनो वक्त क्या कह रहा है, उसकी आवाज क्या है। बंदर कूदा, उसके हाथ पैर टूट गए, क्यों? क्योंकि वक्त, वो वक्त निकल गया था, वो अमूल्य वक्त, जिस वक्त में कूदने से कोई राजकुमार राजकुमारी बन जाए, जीवन में परिवर्तन आ जाए, संपन्नता आ जाए, समृद्धि आ जाए। एक राजकुमार उधर से गुजर रहा था, उसने देखा इतनी खूबसूरत राजकुमारी, उसे अपने महल में ले गया। राजा इठाट से वो रहने लगे। और वहीं एक मदारी गुजर रहा था, उसने देखा एक बंदर हाथ पैर टूटे हुए, मदारी उसको लेके चला गया। वो जीवन भर आनंद में रही उस एक पल के कारण, उस एक पुकार, उस एक आवाज को सुनने के कारण। और ये बंदर जीवन भर दूसरे के इशारे पर नाचता रहा, कैद में रहा, गुलाम रहा। एक पल, कहा जाता है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते, रुकते नहीं। इसीलिए समझो समय क्या कह रहा है। इतिहास गवाह है, बड़ी बड़ी सभ्यताएं नष्ट हो गईं जिन्होंने समय की आवाज नहीं सुनी, बड़ी बड़ी सल्तनतें नष्ट हो गईं जिन्होंने समय की आवाज को नहीं सुना, समय को पहचाना नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ब्रांड जिनका कभी संसार में सिक्का चलता था, वो भी नष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने भी समय को पहचाना नहीं। एक समय था नोकिया कंपनी, अभी रिंग बजा तो याद आ गया, नोकिया की मोबाइल बाजार में होते थे, आज दिखाई देता है। जो पहले फोटोग्राफर्स थे, फोटो खींचते थे, कोडक के रील्स आते थे, राइट? अभी पता ही नहीं है क्यों, पूरे संसार में उनका सिक्का चलता था, आज वो है नहीं। क्योंकि कहा जाता है जो वक्त के साथ नहीं चलता, वक्त उन्हें बहुत पीछे छोड़ देता है और वो गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। इसलिए इस वक्त की आवाज को सुनना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत मूल्यवान है। और सारी सृष्टि चक्र में ये वक्त कौन सा है? सबसे मूल्यवान वक्त, सबसे अमूल्य वक्त, जिसके लिए भगवान कहते हैं संगम का एक सेकेंड अन्य युगों के एक वर्ष के समान है। इसे अपनी डायरी में, अपनी बुद्धि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख के रखो। भगवानुवाच, इस समय का, संगम युग का एक सेकेंड अन्य युगों के एक वर्ष के समान है। और कई बच्चे कहते हैं बाबा ज्यादा नहीं, हमने 2-4 मिनट ही तो इधर उधर की बातें की, 5 मिनट ही तो गपशप किया, 5 मिनट में क्या होता है? बाबा कहते हैं एक सेकेंड। कल 11 सितंबर 2025 था, अब क्या 11 सितंबर आपको वापस मिलेगा? 10 सितंबर आपको वापस मिलेगा? अपने जीवन की सारी दौलत दे दें आप तो भी आप 11 सितंबर 2025 को अब वापस नहीं ला सकते। क्या इतनी अवेयरनेस हमें है? बाबा कहते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरे कल्प कल्प की रिकॉर्डिंग हो रही है। और जब रिकॉर्डिंग की जाती है तो कितना अटेंशन रखा जाता है। रिकॉर्डिंग रूम देखा है ना, साउंड प्रूफ होता है पूरी तरह से, बाहर की कोई आवाज ना आए, कोई कूका ना हो, कोई चूचा ना हो, गाने वाला भी बड़े ध्यान से। फिल्म जब बना करते थे, जो गीत रिकॉर्ड हो गए, जिसने जैसा एक्ट किया, जो रील में नोंद हो गई, वही फिर बार बार वही चीज देखी जाती थी, राइट? चलो वहां तो रील काटा जा सकता है और जोड़ा जा सकता है, री रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन यहां कल्प कल्प की हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या इतना हमारा अटेंशन है अपने ऊपर? इस भट्टी में क्या ऐसी गहरी हमने चेकिंग की? कल की रिकॉर्डिंग कैसी रही मेरी, अमृत वेले से लेकर रात तक की? आज की मेरी रिकॉर्डिंग कैसी हुई, सुबह से लेकर अब तक की? मेरे विचार, मेरी वाणी, मेरा व्यवहार, मेरा क्लास में अटेंडेंस, योग, कैसा रिकॉर्ड कर रहा? केवल यहां नहीं, चले हम भट्टी में हैं, अपने आप को देख रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, सुंदर गहरे चिंतन सुन रहे हैं। मधुबन का वातावरण तो वैसे भी स्वर्गिक वातावरण है, अव्यक्त वातावरण है, हमें योग युक्त कर देता है। लेकिन यहां से जाने के बाद बहन ने कहा समापन सत्र है। क्या भट्टी समाप्त हो रही है? अब इस भट्टी को समाप्त मत होने दीजिएगा। ये भट्टी तब तक चलती रहे जब तक मैं अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। ये भट्टी तब तक चलती रहे जब तक मैं बाप समान नहीं बन जाता। ये भट्टी तब तक चलती रहे जब तक मैं अपनी संपन्नता, अपनी संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। इस संकल्प को लेकर जाना, इस आग को लेकर जाना और इस आग को बुझने मत देना, इस आग को भड़काते रहना अपने अंदर। भट्टी में आग जलाई जाती है ना, तो जो आग प्रज्वलित हुई है इन तीन दिनों में, ये आबू रोड तक उतरते उतरते, ट्रेन में बैठकर आगरा तक पहुंचते पहुंचते, आगरे का पेठा देखकर, अपने सगे संबंधियों का चेहरा देखकर, ये मध्यम ना होने पाए, ये संकल्प लेके जाना कि इसे हम प्रज्वलित रखेंगे। क्यों? क्योंकि यही समय की पुकार है। अपने अंतर में वो जो इच्छा है, चाहना है, जो बनना है, जो अंतरात्मा कहती है, आपने अपने अंतरात्मा की आवाज यहां मौन रहकर सुनी होगी कि आत्मा क्या पुकार रही है, आत्मा क्या चाहती है। और हम आत्मा की आवाज को दबा देते हैं, ये काम है, ये काम है, ये करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सबसे महत्वपूर्ण मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी आत्मा की आवाज सुनना, कि मेरी आत्मा अभी के समय के अनुसार क्या आवाज लगा रही है, क्या कह रही है, उसे ना दबाए। तो इस वक्त को देखते हुए, समय को देखते हुए, आठ पुकार हैं विशेष समय के। पहली पुकार, समय की पुकार, हो जाओ तैयार। ये पहली पुकार है, समय की पुकार, अब हो जाओ तैयार। किस चीज के लिए तैयार? किस चीज के लिए तैयार? सब छोड़ने के लिए तैयार, सब छोड़ने के लिए तैयार। जो वस्तु हमने संग्रहित कर लिए हैं, जो मकान हमने बनाया है, इतनी मेहनत करके इतना धन इकट्ठा किया है, छोड़ना पड़ेगा ना, छोड़ने के लिए तैयार है? तैयार है? ये चीजें जाएंगी हमारे साथ? तो जो वस्तुएं हमने संग्रहित की हैं, छोड़ना होगा। क्या मैं तैयार हूं? देख लें अपनी एक एक चीज से कितना अटैच्ड है आत्मा। यदि मोबाइल कहीं रख कर आप भूल जाओ, फिर भट्टी एक तरफ, भट्टी का भट्टा मोबाइल कहां है, किसने लिया, कहां अनाउंस करवाऊं, किसके पास पहुंचू, खोया पाया डिपार्टमेंट कहां पे है, दीदी कहां है, दीदी मैं किससे संपर्क करूं, है ना, है या नहीं? है या नहीं, दिल से पूछो। हम कितने अटैच्ड हो गए हैं अपने मोबाइल से। एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्या एक दिन, ऑनेस्टली देखो, 3 दिन की भट्टी थी, 3 दिन क्या मैं अपने मोबाइल से मुक्त रहा? जबकि पहले ही दिन ये कह दिया गया मोबाइल का मौन रखना है, कहा गया ना। कितना मैं मोबाइल से डिटैच रहा, मोबाइल मेरा जीवन बन गया है। वस्तुओं को हो जाओ तैयार, सब छोड़ने के लिए तैयार। बाबा ने कहा है निराधार होना पड़ेगा, कोई भी आधार काम नहीं आएगा, कोई भी आधार काम नहीं, निराधार होना होगा। निराधार होना ही तैयार होना है, जिसको बाबा कहते हैं जब हलवा बन जाता है सारे किनारे छोड़ देता है। मैं वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार हूं। ऑनेस्टली चेक करो जाते जाते अंतिम सत्र में, क्या मैं अपने सगे संबंधियों को छोड़ने के लिए तैयार हूं? सगे संबंधी लौकिक, और लौकिक को छोड़ के अलौकिक में भी संबंध हम बना लेते हैं, जिससे बात किए बिना हमारा मन नहीं मानता। कोई बात हुई तो पहले बाबा की बजाय उस फलाने व्यक्ति को जो मेरा बहुत नियर और डियर हो गया है उसी मैं बात करता हूं, उसी सारा हालचाल सुनाता हूं। अपने संबंधियों को छोड़ने को तैयार है? छोड़ना पड़ेगा, कितने भी अटैच हों, हमारी आंखों के सामने सबको जाना है। तैयार हैं? अपने मान शान पद, जिसे पाने के लिए हमने पूरे जीवन परिश्रम किया है, छोड़ने को तैयार हैं? कहीं आपको जो सीट है, आपका जो पद है, आपकी जो पोजीशन है, उसे छोड़ दो, कितना वक्त लगेगा मुझे, कितना वक्त लगेगा, सोचो। क्यों ऐसा, क्यों मैं क्यों छोड़ू? छोड़ना पड़ेगा ना। और सबसे ज्यादा शरीर, क्या इस शरीर को छोड़ने को तैयार है? तो हो जाओ तैयार, अर्थात गहराई से चेकिंग हम करें, क्या हम तैयार हैं छोड़ने के लिए। बाबा ने कहा 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक, एवर रेडी बच्चे, कहा बाबा का इशारा मिला और हां जी बाबा तैयार, बच्चे छोड़ दो, छोड़ो तो छूटो। बिना क्या क्यों कैसे के, क्या मैं छोड़ सकता हूं, इशारा मिला छोड़ो, क्या मैं छोड़ सकता हूं। एक पर्वतारोही था, पर्वतारोहण के लिए चढ़ा, अब उतर रहा था लेकिन अंधेरा हो गया, मौसम बहुत खराब हो गया, उसे नीचे बेस कैंप पे पहुंचना था, मौसम खराब, आंधी तूफान चलने लगा, वो ईश्वर को याद करते करते उतर रहा था, उसका पैर फिसला और वो लुढ़कता लुढ़कता बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा। एक टहनी उसके हाथ में आ गई, उसने उसे पकड़ लिया और लटक गया। दिल से ईश्वर को धन्यवाद किया कि ईश्वर आपने मुझे बचा लिया, मैं आपको याद ही कर रहा था, आपने मेरे प्राणों की रक्षा कर ली, अब जैसे तैसे आप मुझे यहां से निकालें। उस बहुत ही हृदय से पुकारा, बहुत ही दिल से याद किया भगवान को। भगवान प्रकट हो गए, रात हो गई थी, भगवान ने कहा यदि तुझे बचना है तो जो ये डाली तूने पकड़ रखी है इसे छोड़ दे। छोड़ा होगा? यदि तुझे बचना है, तुमने मुझे याद किया, ये जो डाली तुमने पकड़ रखी है ना इसे छोड़ दे। उसने सोचा इतनी मुश्किल से तो कोई चीज हाथ में आई है, लुढ़क रहा था इतने ऊपर से, और भगवान को याद किया और भगवान ने डाली तो दे दी जिसको मैं पकड़ के लटका हूं, अब कह रहे हैं छोड़ दे, इसे छोड़ूंगा तो पता नहीं कहां। भगवान का इरादा कहे मुझे ऊपर ले जाने का तो नहीं, अभी तो मुझे रहना है। छोड़ दे कहा, नहीं छोड़ा। और ठंड इतनी थी, बर्फ का पहाड़ था, रात हो गई थी, पूरी रात वो लटका रहा, सुबह रेस्क्यू टीम आई, देखा तो वो मर गया था, बर्फ जमा हुआ था। और देखा उस डाली के ठीक नीचे, 2 फीट नीचे जमीन थी, ठीक 2 फीट नीचे जमीन थी, लेकिन अंधेरे के कारण वो जमीन उसे दिखाई नहीं दे रहा था। भगवान ने कहा छोड़ दे, केवल इतनी ही आज्ञा देते हैं भगवान, ज्यादा विस्तार नहीं देते, सार में बात करते हैं, इशारे में बात करते हैं। इशारा बंदरे ने समझ लिया था, राजकुमारी बन गई। यदि भगवान कह रहे हैं छोड़ दो, छोड़ दो, क्या मैं तैयार हूं? निराधार होना होगा आज नहीं तो कल। मैंने क्यों इन आधारों को अपना बना रखा है जबकि पता है कि इन्हें छोड़ना है? इस भट्टी से संकल्प करके जाओ, धीरे धीरे मैं मुक्त होता चलूं इनसे, एक झटके में ना सही तो भी मैं इनसे अपने आप को डिटैच करता चलूं, इनसे मुक्त होता चलूं, इन्हें चेक करता चलूं, तो तैयार होना है मुझे। और कैसे तैयार होना है? हो जाओ तैयार किसके लिए? घर चलने के लिए तैयार। जब छोड़ेंगे तभी तो घर चल पड़ेंगे ना, तो घर चलना है। बाबा रोज रोज मुरली में याद दिलाते हैं, बच्चे घर जाना है, घर जाना है, मैं घर जाने के लिए तैयार हूं। या एक हमारा नाटक है, स्वर्ग में एक सीट खाली है, सबके पास पहुंचे नारद जी, हा? कि बुढ़िया चल, तू तो अब बुजुर्ग हो गई है, अभी क्या बात कर रहे हो नारद जी, अभी पोत्रे धोत्रों का मुंह देखना है। जिसके पास भी गए स्वर्ग में जाने को भी तैयार नहीं। हम चलने को तैयार हैं। तो 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने कहा, 1 एवर रेडी बच्चे, 2 रेडी बच्चे, रेडी मतलब थोड़ा सा समय लेकर के फिर भी तैयार हो जाए, एवर रेडी, सेकंड में तैयार, पास विद ऑनर, इशारा मिला तैयार, पुकार आई ऊपर से बच्चे आओ, चल पड़े, इतने डिटैच्ड, इतने तैयार। दूसरे रेडी बच्चे जो थोड़ा सा अपनी तैयारी की, समेटा और चले, लेकिन फिर भी सेकेंड नंबर। और तीसरे बच्चे, एक एवर रेडी, दूसरे रेडी, और तीसरे लेजी। बाबा के महावाक्य, तो बाबा ने लेजी की तो बात ही नहीं की, एवर रेडी बनो, एवर रेडी। तो देखिए हम इतने तैयार हैं, तो तैयार होना है घर चलने के लिए, तैयार होना है साक्षात्कार कराने के लिए, जय जयकार के लिए, तैयार होना है फाइनल पेपर के लिए। देखें क्या हम जय जयकार के लिए, साक्षात्कार के लिए भी तैयार हैं? बाबा ने एक बार, बच्चे कहते हैं ना कि बाबा जल्दी करो जल्दी करो, विनाश कब होगा विनाश कब होगा, तो बाबा ने एक बार संदेशी को एक दृश्य दिखाया कि बच्चे कहते हैं कि जल्दी करो और पर्दा खोलो। बाबा ने कहा जब पर्दा खोलेंगे विनाश होगा तो प्रत्यक्षता भी तो होगी, जय जयकार भी तो होगी, केवल बाबा की प्रत्यक्षता नहीं लेकिन तुम्हारी भी प्रत्यक्षता होगी, राइट? तो बाबा ने संदेशी को दिखाया, पर्दा खोल दिया, सामने भक्त, और बाबा ने कहा देखो ये तुम्हारे इष्ट देव देवी, और अंदर इष्ट देव देवी क्या कर रहे थे? तैयार हो रहे थे, कोई काजल लगा रहा है, कोई कंघी कर रहा है, कोई कपड़े बदल रहा है, किसी के हाथ हिल रहे हैं, किसी की आंखें हिल रही हैं, किसी का टांग हिल रहा है। भक्तों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये हमारे इष्ट देव देवी नहीं है, हमारे इष्ट देव देवी तो कितने संपन्न हैं, कितने संपूर्ण हैं। तो तैयार क्या हम हैं साक्षात्कार कराने के लिए, जय जयकार के लिए? क्या ऐसे हम तैयार हो गए हैं? उसकी तैयारी हमें करनी है। जब हम कहते हैं समय की पुकार, हो जाओ तैयार, तो ये हमारी तैयारी कितनी है? फाइनल जो पेपर होने वाला है उसके लिए हम कितने तैयार हैं? 1 सेकेंड का पेपर होगा, क्या उस 1 सेकेंड के पेपर के लिए मैं तैयार हूं? चारों ओर हाहाकार होगा, क्या मेरा मन तब स्थिर हो पाएगा? अभी जब मैं योग भट्टी में बैठा हुआ हूं तब भी मेरा मन यहां वहां भाग जाता है, और तब जबकि पांचों तत्व विकराल रूप में होंगे, जबकि पांचों विकार अपने फुल फोर्स में अटैक कर रहे होंगे, जबकि चारों ओर हाहाकार की स्थिति होगी, बाबा भी साक्षी हो गए होंगे, ऐसे समय पर क्या मैं एक सेकेंड में अपने आप को स्थिर कर पाऊंगा? एक सेकेंड का पेपर है, क्या एक सेकेंड में मैं अशरीरी हो सकूंगा? क्या एक सेकेंड में मैं परम धाम में स्थित हो पाऊंगा? ये है तैयारी। क्या इसके लिए तैयार हूं? ये है समय की पुकार। इस पुकार को हम कितना सुन रहे हैं? अब इस पुकार को सुनकर हमें अपनी तैयारी करनी है। मम्मा ने इस पुकार को सुना और अपना स्लोगन बना लिया, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इसलिए मम्मा सबसे पहले नंबर वन हो गई ना, सबसे पहले संपूर्ण बनी, क्योंकि अपना स्लोगन ही मम्मा ने यह बना लिया था, हर घड़ी अंतिम घड़ी। मैं भी अपनी हर घड़ी अंतिम घड़ी मानते हुए अपने आप को देखूं, क्या क्या मैं तैयार हूं। थोड़ी देर के लिए विचार करें। बाबा सम्मुख आ गए और बाबा कह रहे हैं, बच्चे चलो घर चलना है। देखें अपने आप को, मैं कितना तैयार हूं। बाबा लेके चल पड़े मुझे वतन में। ऊपर जाते हुए क्या नीचे की चीजें मुझे खींच रही हैं? कोई भी चीज याद आ रहा है? अचानक बाबा आ गए, कहा चलो, और लेके चल पड़े बाबा मुझे ऊपर। देखें क्या मैं खुशी से जा रहा हूं, या ये याद आ रहा है कि ये करना था वो करना था, चीजें संबंधी। भक्तों के सामने बाबा मुझे ले गए और भक्तों को कह रहे हैं, यही तुम्हारा इष्ट है, यही दुर्गा है, यही विघ्न विनाशक गणेश है। देखें क्या मैं उस स्वरूप में हूं, अंतिम पेपर, चारों ओर हाहाकार, पांचों तत्वों का तांडव, पांचों विकार फुल फोर्स में। देखें एक सेकेंड में परम धाम पहुंच जाए। बाबा कहा और परम धाम। चेक करें अपनी चेकिंग खुद, मैं कितना तैयार हूं। खुद ही खुद को मार्क्स दें और अपनी तैयारी करें। हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं। दीदी कहा करते थे कि एक अच्छा स्टूडेंट पेपर से पहले अपनी तैयारी करता है, पेपर आने पर तैयारी नहीं करता। पेपर सामने आ जाए फिर क्या तैयारी की जाती है? हमें पता है क्या पेपर आने वाले हैं, हमें क्या तैयारी करनी है, उसके लिए मैं कैसी तैयारी कर रहा हूं, ये खुद को देखना है। तो पहली बात, समय की पुकार, हो जाओ तैयार, क्योंकि समय कभी भी आ सकता है, काल कभी भी आ सकता है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। आजकल बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, कोई भरोसा है नहीं, अगले पल का कोई भरोसा नहीं है, काल कभी भी आ सकता है। इसीलिए हर पल अपने आप को तैयार रखना है। दूसरी बात, समय की पुकार, मत करो इंतजार। हम तैयार क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार, ये व्यक्ति बदल जाए उसके बाद मैं अच्छा पुरुषार्थ करूंगा, ये परिस्थिति ठीक हो जाए उसके बाद मेरी रफ्तार ठीक हो जाएगी, ये हो जाए उसके बाद ये हो जाएगा। किसी चमत्कार का हम इंतजार कर रहे हैं, बाबा की मदद का हम इंतजार कर रहे हैं, इंतजार है किसी ना किसी चीज की, इसलिए हम तैयार नहीं हो पा रहे हैं। और बाबा ने कहा है तुम इंतजार कर रहे हो, इसीलिए संसार वाले भी इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए इंतजार मत करो बल्कि इंतजाम करो, अर्थात खुद को तैयार कर लो। चेक करें किस बात का मुझे इंतजार है, किसका इंतजार, किसके लिए मैं रुका हुआ हूं, क्यों मेरा पुरुषार्थ स्टक है, रुका हुआ है, बाधित है, किसका, किस परिस्थिति के ठीक होने का, किस चमत्कार का। कई लोग चमत्कार का भी इंतजार करते रहते हैं कि कुछ चमत्कार होगा और मैं योग युक्त हो जाऊंगा, कुछ चमत्कार होगा और मैं संपन्न संपूर्ण बन जाऊंगा। ऐसा चमत्कार होगा, बाबा की मदद हो जाएगी और उसके बाद ये हो जाएगा। बाबा ने कहा है यदि इंतजार करते रहोगे तो ना तो वो व्यक्ति बदलेगा और ना तुम बदलोगे, इसलिए इंतजार मत करो, इंतजार मत करो। इंतजार करते रहे हो तो ना वो बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी, ना तुम बदलोगे। स्लोगन क्या दिया है बाबा ने, स्वपरिवर्तन से विश्व का परिवर्तन, तुम्हारे बदलाव से संसार का बदलाव होगा। और हम हमेशा दूसरों के परिस्थितियों के ठीक होने का इंतजार कर रहे होते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति था, बहुत दुखी होके बैठा हुआ था, बहुत दुखी था। कुछ बच्चे उसके पास आए और पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं, क्या बात है। तो उसने कहा जब मैं छोटा था ना तो मैं सोचता था कि मैं बड़ा होकर पूरी दुनिया को बदल दूंगा, जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो मुझे लगा नहीं दुनिया ना थोड़ी ज्यादा हो गई, मैं अपने देश को बदलूंगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो लगा नहीं देश भी ज्यादा बड़ा हो गया, मैं अपने राज्य को बदलूंगा। और बड़ा हुआ तो लगा नहीं राज्य भी ज्यादा हो गया, डिस्ट्रिक्ट को बदलूंगा, शहर को बदलूंगा। और अब जब मेरे दांत टूट गए हैं, बुजुर्ग हो गया हूं मैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तब यहां बैठ करके मैं ये सोच रहा हूं काश मैंने ये सोचा होता कि मैं खुद को बदल लूं, तो मैं बदलूं तो शायद मेरा परिवार बदल जाता, मेरे परिवर्तन को देख के शायद परिवार बदलता, उसे देख करके शायद शहर मोहल्ला बदल जाता, डिस्ट्रिक्ट बदल जाता, राज्य बदल जाता, कुछ तो परिवर्तन होता। लेकिन आज इस अवस्था में पहुंच के मैं देख रहा हूं ना तो मैं दुनिया बदल पाया और ना किसी व्यक्ति को बदल पाया, मेरा तरीका गलत था। तरीका क्या होना चाहिए, काश मैंने खुद को बदला होता तो परिस्थिति भी बदल जाती, व्यक्ति भी बदल जाते और मैं आज इस दयनीय स्थिति में नहीं होता। इसलिए जो इंतजार करेंगे ना, कहा जाता है इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना पुरुषार्थ करने वाले छोड़ देते हैं। जो पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थ, वो तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद प्राप्त कर लेंगे, उनका जो छोड़ा हुआ होगा ना वो इंतजार करने वाले को मिलेगा। अब सोच ले, हमें थोड़ा सा चाहिए, बचा खुचा चाहिए या फिर विश्व की बादशाही चाहिए। जहां भी है ना, जैसे भी है, जिस परिस्थिति में है, जिन लोगों के बीच है, जो करने वाला होता है वो कभी बहाना नहीं देता, एक्सक्यूजेस नहीं देता कि इसके कारण बीमार हो गया हूं, बीमारी ठीक हो जाए उसके बाद कुछ अच्छा करूंगा। एक्सक्यूजेस नहीं, ये लूजर्स की निशानी है, हारने वालों की निशानी है। विनर्स, योद्धा कभी भी बहाने नहीं देते। इसलिए मैं जहां भी हूं,
जैसा भी हूं, जिस स्थिति में भी हूं, जिन लोगों के बीच भी हूं, वही मेरे लिए सर्वोत्तम स्थान है, वही मेरे लिए सर्वोत्तम समय है। जिसको आगे बढ़ना होता है वो वहीं से आगे बढ़ जाता है, और जिसको नहीं बढ़ना होता वो हर परिस्थिति के अनुकूल होते हुए भी वहां भी प्रतिकूल बातें निकाल लेता है। होता है या नहीं होता? जो अच्छाई देखने वाला होता है वो अच्छाई ढूंढ लेता है, और जो बुराई ढूंढने वाला होता है वो बुराई ढूंढ लेता है। कैसा भी हो, एक व्यक्ति बहुत निराश था। उसका मित्र उसके पास आया, कहा इतने निराश क्यों हो तुम? तुम्हारे पास तो इतना धन है कि तुम्हारी 7 पीढ़ी खा सकती है। कहा इसीलिए तो निराश हूं कि 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। तो जिसको निराश रहना होता है, जिसको कुछ नहीं करना होता है ना, वो दुख के कारण ढूंढ लेता है कि मैं इसलिए दुखी हूं, इसलिए निराश हूं। और जो खुश रहने वाला होता है वो विपरीत चीजों में भी अच्छाई ढूंढ लेता है कि यंग मच्छर पहली बार उड़ान भरा। जब वापस आया तो उसके फादर ने उसे पूछा कि बेटा कैसी थी तेरी आज फर्स्ट फ्लाइट थी ना, पहली बार तो उड़ा, कैसी थी तेरी फर्स्ट फ्लाइट? बोला पिताजी मजा आ गया, मैं जहां भी गया ना लोगों ने ताली बजा के मेरा स्वागत किया। वो जहां भी जाता था लोग तड़ 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 मारने के लिए उसके पीछे भागते थे। और वो वापस आया, क्या लेके आया? पिताजी मजा आ गया, जहां भी गया लोगों ने ताली बजाकर मेरा स्वागत किया। यदि वो ये सोचता कि पिताजी लोग तो बड़े हत्यारे किस्म के हैं, मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे थे, कल से मैं नहीं उड़ूंगा, तो क्या होता? क्या वो हाँ अच्छा पायलट नहीं बन पाता, जीवन का आनंद नहीं ले पाता? इसलिए इंतजार नहीं, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं? प्रकृति हमारा इंतजार कर रही है। कौन कौन प्रकृतिपति बैठे हुए यहां पे? प्रकृतिपति कौन कौन बैठे हुए हैं? अच्छा बस थोड़े से, सभी प्रकृतिपति हैं ना। प्रकृति हम प्रकृतिपतियों का इंतजार कर रही है कि कब मेरे प्रकृतिपति आएंगे, मुझे संपूर्ण पावन करेंगे, हाथ में माला लेकर हमारा इंतजार कर रही है। प्रकृति हमारा इंतजार कर रही है, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? संसार की दुखी अशांत आत्माएं हमारा इंतजार कर रही हैं कि कब हमारे दुख हरता सुख करता आएंगे, हमारे दुख हरेंगे, हमें सुख देंगे। दुख हरता सुख करता किसका इंतजार कर रहे हैं? भक्त अपने इष्ट देवों का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे इष्ट देव कहां हैं, कहां हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण करने वाले कहां हैं। भक्त इंतजार कर रहे हैं, इष्ट देव देवी क्या कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? आप सभी इष्ट देवियां बैठी हैं ना, इष्ट देव बैठे हैं ना। जो भटकती हुई आत्माएं हैं वो इंतजार कर रही हैं कि कब हमारे मुक्तिदाता आएंगे और हमें मुक्त करेंगे। मुक्तिदाता क्या कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? एडवांस पार्टी हमारा इंतजार कर रही है, कब हमारे साथी आएंगे, हम साथ मिलकर चलेंगे। बाबा ऊपर बैठ हमारा इंतजार कर रहे हैं, कब मेरे बच्चे आएंगे और हम सब मिलकर के मुक्ति का गेट खोलेंगे। आप इतने वैल्यूएबल हो, इतने मूल्यवान हो कि ये सब आपका इंतजार कर रहे हैं, भक्त भी आपका इंतजार कर रहे हैं, संसार की दुखी अशांत आत्माएं आपका इंतजार कर रही हैं, एडवांस पार्टी प्रकृति और भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं, भटकती हुई आत्माएं आपका इंतजार कर रही हैं। इतने मूल्यवान, इतने आप इंपॉर्टेंट हैं। अब पूछें अपने आप से, ये सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं किसका इंतजार कर रहा हूं, मैं किसका इंतजार कर रहा हूं? यदि इस हॉल के बाहर खड़ा होकर कोई आपका इंतजार कर रहा हो, आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी अपने कार्यों को मैं संपन्न करूं और जाऊं, क्योंकि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। इसीलिए इस गहरी फीलिंग को यहां से लेके जाइएगा, इस भट्टी से, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, भगवान सहित मैं किसका इंतजार कर रहा हूं। अपने इंतजार को खत्म कर दें, मुझे किसी का कोई इंतजार नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना कोई चाहिए ना कुछ चाहिए, बस एक ही ध्येय, अपने आप को अब संपन्न संपूर्ण बनाना है और इन सब के इंतजार को खत्म करना है। इंतजार नहीं करूंगा मैं किसी का, इंतजाम करूंगा, तैयारी करूंगा, क्योंकि सब मेरे लिए वेट कर रहे हैं, बस खड़ी हुई हो ट्रांसपोर्ट पे, सब बैठ गए, आपका ही इंतजार हो और आप यहां चाय की चुस्कियां ले रहे हो छत पे बैठ के, तो कहेंगे ना भाई ढूंढो कहां है वो। सबकी नजरें केवल आप पर है, सबकी नजरें, इस ढंग से अपने आप को देखना तो पुरुषार्थ तीव्र भी होगा और परिवर्तन फास्ट होगा, और ये सत्य है क्योंकि भगवान ने ये कहा है। इसलिए मुझे खुद को तेजी से परिवर्तित करना है, तैयार करना है और सबके इंतजार को पूर्ण करना है, ये मेरा ध्येय, इसे लेके जाना। तो दूसरी पुकार, समय की पुकार, मत करो इंतजार। तीसरी पुकार समय की, समय की पुकार, समय की पुकार, बंद करो माया का द्वार, बंद करो माया का द्वार। कई खिड़की और दरवाजे हमने खोल के रखे हुए हैं माया के लिए, है या नहीं? बहुत पुरानी मित्रता है ना उसके साथ, तो जैसे पुरानी मित्रता होती है, पुरानी दोस्ती होती है, उसे बिठा ही लेते हैं कि आओ आओ बड़े दिनों बाद आए हो, थोड़ा चाय पानी पी करके जाओ। बाबा ने इस सीजन की मुरली में कहा, माया को गेट आउट करो, माया को गेट आउट, बहुत उसकी खातरी हो गई, बहुत उसके साथ आनंद ले लिया। इस सीजन की मुरली में बाबा ने हम सबको कहा, माया को गेट आउट करो, बाहर निकालो, यदि बैठा है तो बाहर निकाल के द्वार बंद, क्योंकि जब तक माया के अंश हमारे साथ हैं तब तक हम तैयार नहीं हो पाएंगे, तब तक अपने कर्तव्यों को हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे। बाबा ने कहा, कब तक युद्ध करते रहोगे? यदि अंत तक युद्ध करते रहे तो कहां पहुंच जाएंगे? युद्ध करते करते त्रेता में पहुंच जाएंगे, तीर कमान लेकर के। तो पसंद है? कौन कौन श्री सीता और श्री राम बनना चाहता है, जरा हाथ उठाएं। हां, एक सीता जी मिली। आपके लिए राम की तलाश करनी पड़ेगी। तो युद्ध करते रहेंगे तो बाबा ने कहा त्रेता तक पहुंच जाएंगे, है ना? युद्ध मत करो, लक्ष्य है हमारा श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना, इसीलिए द्वार बंद, द्वार बंद। एक तो गेट आउट करो, यदि कोई भी बात बैठी है, माया का कोई भी रूप हमने पाल रखा है, बाहर निकालो। जितनी जल्दी बाहर निकालेंगे उतना जल्दी आप अपने ध्येय की ओर पहुंच पाएंगे, शिखर पर पहुंच पाएंगे, अपने बाप समान के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और जितने लंबे समय तक बैठा करके रखेंगे उतना आपके लक्ष्य प्राप्ति में भी देरी और श्रेष्ठ पद की प्राप्ति में भी देरी, देरी हो जाएगी। इसीलिए जल्दी से, जब निकालना ही है, जब निकालना ही है माया को, माया मुक्त बनना ही है, तो क्यों नहीं आज, अभी, इसी वक्त, आज अभी इसी वक्त का संकल्प रखें। कल पर नहीं, कल निकाल देंगे, चलता है ना, होता है ना, अभी कौन बना है ना, ये संकल्प माया को बिठा देते हैं। इसीलिए माया को गेट आउट करके द्वार बंद करना है अच्छी तरह से। पहले के जमाने में जो किले हुआ करते थे, कोई भी शत्रु प्रवेश ना कर जाए उसके लिए सारे खिड़की दरवाजे सब बंद अच्छी तरह से चेक करके टाइट करके बंद रखते थे, राइट, कि कहीं से भी कोई कमजोर दरवाजा होगा, कोई कमजोर ईंट होगी, शत्रु प्रवेश कर लेंगे। हमारे अंदर कैसे प्रवेश करते हैं, मोटी मोटी चीज देखें, सूक्ष्म चीजों पर जरूर गहराई से चिंतन कीजिएगा। एक तो अंदर बैठी है उसे निकालना है, दूसरा प्रवेश नहीं करने देना है। हमारा देखना कैसा है, क्या देखते हैं हम, क्या सुनते हैं हम, इसके माध्यम से माया की प्रवेशता होती है। बाबा ने कहा है तुम्हारा देखना तुम्हारा सुनना या तो तुम्हें संपूर्णता के नजदीक ले जाता है या तुम्हें संपूर्णता से दूर ले जाता है। क्या देखता हूं और क्या सुनता हूं, सारे दिन देखें। बाबा ने कहा आंखें मिली हुई है आत्मा को देखने के लिए, आंखें मिली हैं परमात्मा को देखने के लिए, आंखें मिली हुई है तुम्हें पूरी सृष्टि चक्र को देखने के लिए, अपने पार्ट को देखने के लिए, इसलिए आंखें मिली। इन आंखों से क्या देखता हूं, राइट, तीसरे नेत्र से देखें, आंखें तो काम के लिए केवल अर्ध निमग्न रूप से रहें। कानों से क्या सुनता, यहां से माया की प्रवेशता होती है। तुम्हारा देखना और सुनना या तो तुम्हें संपन्न संपूर्ण बनाएगा या तुम्हारी संपन्नता संपूर्णता से तुम्हें दूर ले जाएगा। इसलिए देखें कि क्या अंदर जा रहा है, ये भोजन है आत्मा का। जो देखेंगे वही अंदर चलेगा, जो सुनेंगे वही अंदर चलेगा, होगा या नहीं। मोबाइल में आपने अच्छे अच्छे डांस देख लिए, रील्स देख लिए, अब जब योग में बैठेंगे तो वही डांस यहां चलने लगेगा, होगा या नहीं होगा। हमारा सोचना कैसा है, यह भी द्वार है, क्या सोच रहा हूं मैं, यहां से हम माया को प्रवेश कराते हैं। व्यर्थ संकल्प आया गेट से ही आउट, गेट आउट, काम नहीं है तुम्हारा, क्यों अंदर प्रवेश करने दे रहे हैं। कोई भी दुनियावी चिंतन है, कोई भी पास्ट का चिंतन है, कोई भी व्यर्थ का चिंतन है, अनावश्यक चिंतन है जिसकी जरूरत ही नहीं है, कोई भी विकार से जुड़ा हुआ संकल्प है, उसे क्यों प्रवेश करने देते हैं, क्यों सस्टेन करते हैं। कई बार फैंटेसी क्रिएट करते रहते हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा, हम मन में ही ख्याली पुलाव विकारों को जोड़ करके। तो हमारा देखना हमारा सुनना हमारा सोचना द्वार बन जाता है। और गहराई से आप चिंतन कीजिएगा, मैं केवल चिंतन के लिए आपको यहां छोड़ रहा हूं। लेकिन एक बात बाबा ने और गहरी कही है जिस पर जरूर अपना ध्यान दें, माया के आने के सबसे बड़े द्वार जो बाबा ने कहे वो है मैं और मेरा। यहां से प्रवेश करती है माया, सूक्ष्मता से और चेकिंग कीजिएगा, लेकिन मैं ऐसा, मैं वैसा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं। बाबा कहते हैं इसकी बलि चढ़ाओ। जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए रावण को मार के, तो माता कौशल्या ने उनसे पूछा कि बेटा रावण को तुमने मार दिया, तो श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि माता मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने मारा, मैंने मारा। रावण का जो मैं था, रावण का जो अहम था, उसने उसे मारा। तो हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, कितने भी लंबे समय से ज्ञान में क्यों ना चल लें, कितनी भी सेवा क्यों ना कर लें, ये जो मैं है वो मार देता है। ये मैं जो है वो मैला बना देता है, भगवान के महावाक्य हैं, मैं मैला कर देता है, मैं मार देता है, मैंपन आया और तुम्हारी सुंदर स्थिति का गुलदस्ता मुरझाया। इसलिए मैं नहीं, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। करण करावन हार तो वो है ना, वो सब कुछ करा रहे, वो नहीं है तो क्या हम कुछ कर सकते हैं। बाबा को अपने जीवन से माइनस कर दो, कुछ बचेगा? फिर क्या हम कुछ हैं? अच्छा, पूरे ब्रह्मांड में अपनी स्थिति देख लो, पूरे ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में इतनी सारी अनगिनत आकाश गंगाएं, उन अनगिनत आकाश गंगाओं में एक हमारी आकाश गंगा, उस एक आकाश गंगा में अनगिनत सौर मंडल, उन अनगिनत सौर मंडलों में से एक हमारा सौर मंडल, उस सौर मंडल में, हमारे सौर मंडल में भी कितने सारे ग्रह हैं, कितने उपग्रह, कितनी उल्काएं, उनमें एक हमारा ग्रह, उस ग्रह में भी इतने सारे देश, उसमें एक हमारा देश, उस देश में इतने सारे राज्य, उसमें हमारा एक राज्य, उस राज्य में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट जिले, उसमें हमारा एक डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में अनेक शहर, हमारा एक शहर, उसमें अनेक मोहल्ले, अनेक घर, उस घर में एक मैं। कहां हूं आप? कहां हूं आप? और मैं, मैं इस पूरी कायनात में अपनी स्थिति देख लें, कहां हैं हम? ये अहम नष्ट कर देता है। इसलिए मैंपन यही माया का सबसे बड़ा द्वार बन जाता है। गहराई से चेक करें, अर्पित कर दें, मैं नहीं बस तू ही तू, कराने वाला तू है। जब भी बाबा कहते हैं मैं याद करो, या मैं आता है यूज भी करो, तो मैं की जगह क्या याद आए? मैं आत्मा। और मैं कौन सी आत्मा, ये भी याद कर लो, मैं आत्मा, मैं ईश्वरीय संतान हूं, भगवान का बच्चा हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, इस संसार में अवतरित हूं, विजयी रत्न हूं, सारे संसार का मुझे उद्धार करना, मैं पूर्वज हूं, ये है मैं। इस रूप में हम मैं को यूज करें। और मेरा, मेरा मेरा का विस्तार कितना है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, बहुत विस्तार है इसका भी। तो जब भी मेरा याद आए, याद करेंगे मेरा बाबा, क्योंकि तीनों लोकों में ये सत्य है। तीनों लोकों में यदि मैं किसी को मेरा कह सकता हूं, तो वो केवल एक बाबा है, एक बाबा, उसके अलावा और कोई मेरा नहीं। कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, क्या वो आपका है? यदि आप देह त्याग देते हैं, देह त्यागने के बाद आप जा रहे हैं एक अंधेरी गुफा में, आपको डर लग रहा है, आप भगवान को याद करते हैं, भगवान कहते हैं ठीक है तेरे को डर लग रहा है आने में, तो ऐसा कर तू वापस जा, तेरे को भेजता हूं जिससे तेरा सबसे ज्यादा प्यार है, उसको कहना कि चल जीवन भर हम लोग साथ साथ रहे हैं, साथ साथ कितना गपियाते थे फोन पे, है ना, चाय पीते थे, पिकनिक करते थे, साथ रहते थे, चल मेरे साथ, उसको साथ लेके आओ। अब आप वापस आ जाते हैं और जिससे रोज लंबी लंबी बात करते हैं आप, जिसके साथ रहते हैं, जिससे बड़ा आपका घनिष्ठ प्रेम है, उससे कहो चल चलो अब तुम मुझे ऐसे अंधेरे इस मझधार में क्यों छोड़ रहे हो, साथ मेरे चलो, भगवान ने मुझे छुट्टी दी है एक को लाने के लिए, चलेगा वो आपके साथ? डंडे कि कहां से ये मरा हुआ फिर से जिंदा हो गया हा? कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है। इसीलिए समय की पुकार, बंद करो मैं मेरा के द्वार, माया के द्वार, राइट? मैं आत्मा और मेरा बाबा। चलिए एक मिनट इसमें स्थित हो जाएं। मैं आत्मा, अपने आत्मस्वरूप में जब भी मैं बोलूं, मैं अपने मूल स्वरूप में, अपने आत्मिक स्वरूप में, मैं आत्मा। और मेरा बाबा, पहुंच जाए मेरे बाबा के पास परम धाम में। मेरा तो एक, तो मैं श्रेष्ठ आत्मा, पूज्य आत्मा, दिव्य आत्मा, संसार की आधार मूर्त पूर्वज आत्मा, जब भी मैं शब्द यूज करें, मैं के साथ अपने स्वमान और मेरा, जब भी मेरा शब्द यूज करें, मेरा कुछ नहीं, मेरा केवल बाबा। इसकी प्रैक्टिस अभी से। तो समय की पुकार, बंद करो माया के द्वार। चौथी पुकार, समय की पुकार, लगाओ अपनी दरबार, लगाओ अपनी दरबार। ब्रह्मा बाबा रोज अपने दरबार लगाया करते थे, रोज चेक और चेंज, चेक और चेंज। तो समय की ये पुकार है, रोज अपनी दरबार, रात को ही नहीं, सुबह ब्रह्मा बनकर रचना करें, सारे दिन विष्णु बनकर के पालना करें, और रात को शंकर बनकर विनाश बुराइयों का, जो नहीं हो पाया उन बातों का। तीन बार तो दरबार जरूर लगा लिया करें, क्योंकि यदि हम अभी स्वराज्य दरबार नहीं लगाएंगे, तो बाबा ने कहा है, अभी जितने स्वराज्य अधिकारी होंगे, उतने ही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी होंगे। राजयोग राजाई ट्रेनिंग है, राजाई ट्रेनिंग, राजाई ट्रेनिंग अर्थात स्वयं पर शासन करने की ट्रेनिंग। और जो राजा अपने दरबार पर ध्यान नहीं देता, उसके दरबारी मनमौजी हो जाते हैं और अराजकता फैल जाती है। इसीलिए दरबार लगाना बहुत जरूरी है। बाबा जिसे दूसरे शब्दों में कहते हैं, बच्चे रोज अपना पोता मेल लिखो, रोज अपना चार्ट देखो। क्यों बाबा ये कहते हैं? इसीलिए कि इतने अमूल्य समय को हम कैसे बिता रहे हैं, कहां जा रहा है मेरा वक्त। अपने आप को देखें, रोज दरबार लगाएं, और ये दरबार ऐसा दरबार हो जो प्रजापालक दरबार हो। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा प्रजा पालक हूं। राजा पिता के समान होता है, पालक होता है, प्रेम करने वाला होता है। इसीलिए केवल दंड देने के लिए नहीं, कोड़े बरसाने के लिए नहीं, शिकायत करने के लिए दरबार ना लगाएं, लेकिन शुक्रिया करने के लिए दरबार लगाएं, प्रेम करने के लिए दरबार लगाएं। लगा सकते ना ऐसा दरबार? ये दरबार लगाओ, राइट, सुबह, दोपहर, रात को। ये जो तीन दरबार हों, ये सुबह हमने कुछ प्लानिंग की उसको सस्टेन करने के लिए, दिन में अपनी चेकिंग और रात को फिर फाइनल चेकिंग। लेकिन जब अपने दरबार में बैठो तो एक पालक की तरह भी बैठो, प्रेम देने वाला पालक। चले थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, स्वराज्य अधिकारी बनकर। मैं स्वराज्य अधिकारी प्रजा पालक आत्मा, अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों का पालक, अपने मन को शुक्रिया अदा करें कि हे मन, तू सुमन है, मेरा बहुत प्यारा मन है, हमेशा शुद्ध सोचने के लिए, सकारात्मक सोचने के लिए तेरा दिल से शुक्रिया। हे बुद्धि, तू सदा मोती चुकती है, सदा स्थिर और एक पर एकाग्र रहने के लिए तेरा शुक्रिया। हे संस्कार, हमेशा अपने अनादि आदि और ब्राह्मण संस्कारों में रहने के लिए दिल से तेरा शुक्रिया। हे आँखें, सबको आत्मा देखने के लिए दिल से तेरा शुक्रिया। हे कान, तुम हमेशा शुद्ध सुनते हो। मुख, तुम हमेशा मीठा बोलते हो। मेरे हाथ और पैर, तुम हमेशा ईश्वरीय सेवाओं में लगे रहते हो। हे मेरी सभी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां, मेरे दरबारी, मेरे बच्चे, सदा श्रीमत के अनुरूप चलने के लिए दिल से आप सबका शुक्रिया। सदा अनुशासित रहने के लिए, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने के लिए दिल से आप सबका शुक्रिया। जैसे आत्मा अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को अपनी सूक्ष्म दिव्य प्रकाश प्रदान करते हुए उन्हें शक्ति दे रही है, उनकी पालना कर रही है, तो क्या करेंगे? ऐसे दरबार लगाएं और दिल से शुक्रिया अदा करें। केवल दंड देने के लिए, केवल शिकायत करने के लिए दरबार नहीं, शुक्रिया करने के लिए, शुद्धता पूर्वक देखने के लिए। जो नहीं कर रहे हैं वो उसके लिए उनको शुक्रिया अदा करो, वो करना शुरू कर देंगे। इसीलिए अपनी चेकिंग इस रूप में करें, अपना दरबार इस रूप में भी लगाएं। और सुबह जो कार्य दिया, यदि रात तक वो कार्य नहीं हुआ तो रात को जाग कर ये करो। दरबार का क्या अर्थ है? बाबा ने 2002 में कार्य दिया था सभी मधुबन निवासियों को कि कम से कम 4 घंटे योग का चार्ट हो और सारे दिन में 8 बार 5 स्वरूपों का अभ्यास अवश्य करना है। और यदि ये नहीं होता है तो सोवने, जाग करके ये होमवर्क पूरा करो, उसके बाद सोव। ये है दरबार। यदि हमने कोई संकल्प लिया है और वो पूर्ण नहीं हुआ, उसे हम जाग करके भी पूर्ण करें, तब जाकर के हमारी पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी और परिवर्तन आएगा। ये हमें करना है। ये है दरबार लगाने का सुंदर तरीका। 5वीं बात, समय की पुकार। समय की पुकार, करो एक से प्यार, करो एक से प्यार और ले लो सारा अधिकार। एक से प्यार, अब तक तो हम अनेकों से प्यार करते आए हैं, सारे कल्प मनुष्यों को देखा है और मनुष्यों को ही देखेंगे, सारा कल्प मनुष्यों से ही सुना है और मनुष्यों से ही सुनेंगे, सारा कल्प मनुष्यों के साथ ही रहे हैं और मनुष्यों के साथ ही रहेंगे। अब समय है, ये समय की पुकार है। समय की पुकार, करो एक से प्यार, एक से प्यार, अनेकों से प्यार नहीं। एक से प्यार होगा तभी सर्व अधिकार प्राप्त हो पाएंगे, एक से प्यार होगा तभी हम उसके समीप बैठ पाएंगे, तभी उसके प्यार के अधिकारी बन पाएंगे। बाबा ने कहा यदि प्यार में परसेंटेज होगा तो परफेक्ट नहीं बन पाएंगे, परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। इसीलिए दिल में केवल एक बाबा, नन बट वन, मेरे दिल में कौन है? एक ही एक है या अनेक हैं? देख ले। ये समय की पुकार है, एक से प्यार, एक को दिल में बिठाओ। हमारा वायदा क्या है? तुझ संग खाऊं, तुझ संग खेलों, तुझ संग बैठूं, तुझ संग हर कर्म करूं। सतयुग में क्या बाबा होंगे? त्रेता में होंगे? द्वापर कलयुग में होंगे? 5000 साल के बाद बाबा हमें मिले हैं और फिर 5000 साल के लिए हमसे जुदा होने वाले हैं। साकार में बाबा थे, अव्यक्त हुए, अव्यक्त से अति अव्यक्त हुए और अति अव्यक्त से कहीं संपूर्ण अव्यक्त हो जाएं, उससे पहले हम उस एक से अपना पूरा अधिकार ले लें। बाबा भी प्यार से कहते हैं, बच्चे तुम मेरे पास बैठो ना, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। भगवान हमसे कहते हैं बैठो ना, मेरे पास बैठो, फिर तो 5,000 साल के लिए हम जुदा हो जाएंगे। मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ, तुम्हारा श्रृंगार करना चाहता हूँ, तुम्हें निखारना चाहता हूँ, तुम्हें तराशना चाहता हूँ। भगवान ये कहते हैं। और यदि मेरा प्यार कहीं और है, किसी व्यक्ति से, किसी वैभव से, सांसारिक चीजों से, मेरा प्यार यहां से हटके वहां जुड़ जाता है। बैठे बाबा के पास, एक गीत है ना, बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। तो बैठ जाया करें बाबा के पास, बाबा को कभी यहां बिठा लें, उसे देखें, कभी बाबा के पास बैठ जाएं। यदि परम धाम में नहीं बैठ पाते हैं ज्यादा देर, यदि सूक्ष्म वतन में ज्यादा देर नहीं बैठ पाते हैं, तो अव्यक्त बाप दादा को तो देखा है ना, उनको देखें, उनकी वीडियो देखें, बाबा का रूप कितना प्यारा है कि तुमसा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, बाबा सा हसीन कोई है। उसे बैठकर देखें, निहारें, उनसे बातें करें। दो प्रेमी प्रेमिका कैसे एक दूसरे के साथ बैठे हुए होते हैं, प्रेमी प्रेमिका सारे दिन एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं। हमारा प्रेम बाबा से क्या इतना नहीं है कि हम सारे दिन उनके साथ बैठ सकें? बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं ना, बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते? तो बैठते हैं, बैठते हैं। एक से ही प्यार है या अनेक हैं? यदि मैं अपना सीना चीर के दिखाऊं तो यहां एक बैठा हुआ है या अनेक बैठे हुए हैं? देख लें, देख लें, अपने हाथ से ऐसे दिल का चित्र बना लें, ऐसे बनाते हैं, बनाइए ऐसे, और बाबा को देखें इस दिल में कौन है, है ना? बाबा को देखें इस दिल से, कौन दिखाई दे रहा है मुझे सामने? हाँ, दिल में देखें। हाँ, एक बहुत प्यारा सा गीत, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता। क्या बात, तू है तो डर नहीं लगता है ना, है ना? तू है तो मुस्कुराते हैं, तू है तो कोई गम ही नहीं है, तो तू है, बस तू ही तू। ऐसा हमें अपने जीवन में एक सुंदर गहरी धारणा ले आनी है, बस तू। तो समय की पुकार, करो एक से प्यार और ले लो सब अधिकार। क्या मैंने भगवान से सारे अधिकार ले लिए हैं? चेक कर, वो शांति के सागर हैं, अब जाने वाले हैं। क्या मैंने शांति के सागर से इतनी शांति अपने अंदर जमा कर ली है कि मैं दूसरों को शांति प्रदान कर सकूं, या मैं खुद ही अशांत हो जाता हूं? वो प्रेम के सागर हैं, क्या मैंने इतना अपने आप को प्रेम से भर लिया है कि मैं प्रेम की गंगा बन गई हूं, या अभी भी मुझे प्रेम की कामना रहती है दूसरों से? क्या उस पवित्रता के सागर से इतनी पवित्रता मैंने भर ली है कि किसी भी अपवित्र आत्मा को मैं पवित्र कर सकूं? क्या ये पूरे अधिकार मैंने ले लिए हैं? चेक करें। जाने वाले हैं बाबा, तू लेट का बोर्ड लगने वाला है, इसीलिए समय की पुकार है, एक से प्यार करो और अपना संपूर्ण अधिकार ले लो, संपूर्ण अधिकार। छठवीं बार, समय की पुकार, कर लो अपना श्रृंगार, कर लो अपना श्रृंगार। समय की पुकार है, श्रृंगार कर लो। श्रृंगार किसे? ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। गीत है ना कि बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है, तो सजनी बनोगे या बनोगे बाराती? तो आप सबका क्या विचार है, सजनी बनना है या बाराती बनना है? सजनी या बाराती? तो सजनी बनना है तो क्या करना होगा? सजना होगा। जब माताएं पहली बार विवाह करके आई थी अपने ससुराल, तो कैसे आई थी? सज धज के आई थी ना, पूरा 16 श्रृंगार करके आई थी। ऐसा तो नहीं कि एक सिंपल कपड़े में ही आ गए थे, ऐसा तो नहीं किया ना, सज धज के आए, राइट? हमें भी सजना है, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से अपना श्रृंगार करना है। इसीलिए एक आईना, एक दर्पण इस भट्टी से सौगात में लेकर जाएं। आईना काम करता है दाग धब्बों को हटाने का और अपने श्रृंगार को देखने का। इसीलिए मोबाइल तो आप देखते ही हैं ना, मोबाइल देखते ही हैं। मोबाइल में सेल्फी मोड पे अपने आप को देख लिया करें कि मैं आत्मा कितनी श्रृंगारित हूं। अपने आप को बाहर से तो हम श्रृंगारित करते हैं, लेकिन आत्मा कितनी श्रृंगारित हुई है ये मुझे देखना है। क्या मैं ज्ञान का स्वरूप बन गया, सर्व गुणों का स्वरूप बन गया, शक्तियों का स्वरूप बन गया? और अभी नहीं बनूंगा तो कभी नहीं बन पाऊंगा। ये समय की पुकार है, अभी तुम श्रृंगार कर लो। जितना यहां श्रृंगारित होंगे उतना ही सारे कल्प श्रृंगारित होंगे। जिसको बाबा कहते हैं, जिसके पास जितना ज्ञान धन होगा उसके पास स्थूल धन भी उतना होगा, जिसके पास जितना गुणों का धन होगा, शक्तियों का धन होगा, उसके पास सारे कल्प उसी मात्रा में धन होगा। कितना मैंने भगवान से लिया है और कितना इनसे अपना श्रृंगार किया है, देखो आईने में देखो। इस भट्टी की ये सौगात आपके लिए, आईना, दर्पण, दर्पण में बार बार, इससे पहले कि दूसरा हमें दर्पण दिखाए हम खुद ही दर्पण देख लें। नारद जी को दर्पण दिखाया था ना कि पहले देखो कैसे, तो इससे पहले कि हम लक्ष्मी जी के आगे बिल्कुल बन ठन के जाएं और लक्ष्मी जी हमें आईना दिखा दें, क्या करना है, पहले खुद ही आईना देख लेना है। सातवीं बात, समय की पुकार, हो जाओ बलिहार, हो जाओ बलिहार, बलिहार। बाबा ने कहा है एक पर बलिहार हो जाओ, बलिहार। जो बलिहार जाएंगे वो बाबा के गले के हार बन जाएंगे, जो बलिहार जाएंगे माया उनके आगे हार खाएगी, जो बलिहार जाएंगे वही विश्व के मालिक बनेंगे, उन्हीं के गले में भक्त भी माला डालेगी, प्रकृति भी माला डालेगी। बलिहार, बलिहार का भाव, सब कुछ बाबा तेरा, सब कुछ तेरा। भगवान को बलिहार जाने वाले सबसे ज्यादा प्रिय हैं बलिहार। भगवान कहते हैं सर्व धर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम मेरी शरण में आ जाओ अर्थात मुझे समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इसलिए मुझसे कुछ ना भी हो रहा हो ना, बलिहार हो जाओ, अर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ। ये सबसे सुंदर धारणा और सबसे सुंदर पुरुषार्थ और समय की ये पुकार, बलिहार हो जाओ। अन्यथा बोझ तुम्हें संपन्न संपूर्ण नहीं बनने देंगे। जो भी चीजें हम लेकर चल रहे हैं वो चीजें हमें मंजिल तक पहुंचने नहीं देंगी, बलिहार जाएं। और बलिहार जाने वालों के लिए भगवान की प्रतिज्ञा क्या है, भगवान की प्रतिज्ञा, तू मेरा बन के तो देख, मैं सबको तेरा ना बना दूं तो कहना, मेरे मार्ग पे आके तो देख, तेरे सारे मार्ग ना खोल दूं तो कहना, भगवान की प्रतिज्ञा है। तो मुझे याद करके तो देख, तेरी सारी चिंताएं ना हर लूं, तेरे सारे बोझ दूर ना कर दूं तो मुझे कहना, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। लेकिन उनके लिए जो अर्पित हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, बलिहार हो जाते हैं हृदय से, तन की समर्पणता की बात नहीं, लेकिन मैं जहां पे भी हूं, जो कुछ भी मेरे पास है, मेरा और मैं तुझे अर्पित हैं, बलिहार हो जाओ। ये समय की पुकार है, क्योंकि हमारे पास जो भी है वो कूड़ा कचरा ही तो है ना। उसमें भी यदि मेरापन है तो वो हमें गंदा ही करता रहेगा, इसीलिए उन सबको अर्पित कर दो। बाबा कहते हैं ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर हो जाओगे। आठवीं बात, समय की पुकार, सुनो चित्कार, सुनो पुकार। बाबा कहते हैं बाबा को तो भक्तों की आवाज सुनाई देती है, तुम्हें भी आवाज सुनाई देती है भक्तों की, चित्कार सुनाई देती है। सुनो उनकी आवाज, सुनो उनकी पुकार, बहुत दुखी हैं। इस सीजन में भी बाबा ने कहा मनसा सेवा के लिए टाइम फिक्स करो, हम टाइम फिक्स कर लें मनसा सेवा के लिए, उनकी पुकार सुने, उनकी चित्कार सुने, ये समय की पुकार है। और यदि ये आठों पुकार हमने नहीं सुने तो नौवीं चीज होगी, क्या होगा? धर्मराज का फटकार, धर्मराज की मार, इसके लिए तैयार रहना होगा फिर। इसीलिए इन आठों पुकारों को बहुत सहजता से राइमिंग में हम ध्यान रख लें। कैसे? बहुत ही इसकी सुंदर सी एक चीज कि आठों पुकारों को हम कितना सुन रहे हैं। कैसे याद रखेंगे इसे? मैं तैयार होके द्वार पे खड़ा था, इंतजार कर रहा था अपने साथी के आने के, तभी एक बहुत ही भयानक बिल्ली मेरी ओर दौड़ी। मैं अंदर गया और मैंने दरवाजा द्वार बंद कर लिया, और वो बिल्ली बहुत ही भयानक थी, तो उसकी शिकायत करने मैं राजा के पास दरबार में गया। दरबार में सभी लोग श्रृंगारे हुए बैठे थे, है ना, और एक संत परमात्मा की याद में डूबा हुआ गीत गा रहा था, जिसमें सभी प्रेम में मगन हो गए थे ईश्वर के। जब उसका गीत पूरा हुआ, भजन पूरा हुआ, तो राजा ही बलिहार हो गया उसके ऊपर कि आपके ऊपर मैं बलिहार। संत ने कहा, नहीं, बाहर प्रजा चित्कार कर रही है, पुकार कर रही है, आप उनके पास जाएं, उनकी सेवा करें। ठीक है, इसे इस रूप में आप याद कर सकते हैं, ये है समय की पुकार। राइट, तो चलें लास्ट में जो पुकार है आत्माओं की, कि सभी आत्माएं चित्कार कर रही हैं, पुकार कर रही हैं, उन सब को हम सकाश देंगे। कैसे? खड़े होकर, खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर, चैतन्य शांति स्तंभ बनकर देखें बाबा की ओर। बाबा हम सबको तैयार होने की प्रेरणा दे रहे, सारा संसार हमारा इंतजार कर रहा है, सभी पुकार रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे उनकी आवाज सुनो, बाबा से दृष्टि लेते हुए चैतन्य शांति स्तंभ बन जाए। जैसे शांति स्तंभ से शांति की प्रकंपन फैलती है सारे विश्व में, वैसे ही मैं चैतन्य शांति स्तंभ हूं, विशाल हूं। मेरे मस्तक से शांति की तरंगें इस दिशा में दूर दूर तक जा रही हैं, और सभी अशांत आत्माओं को शांत कर रही है। जाने दें शांति के प्रकंपन, देखें इस दिशा में, अपनी अंतर्दृष्टि से देखें इस दिशा में दूर दूर तक, विश्व के कोने तक। साइड में टर्न होकर सारे विश्व को ज्ञान का सुंदर प्रकाश देंगे, बन जाएं ज्ञान स्तंभ। और इस दिशा में जितनी भी आत्माएं हैं जो अज्ञान के अंधेरे में भटक रही हैं, उन सब का ज्ञान का प्रकाश प्रदान करेंगे। मैं ज्ञान स्तंभ हूं, फील करें ज्ञान की सुंदर प्रकंपन मुझ मास्टर ज्ञान सूर्य से। इस दिशा में अंत तक जा रही है, ये पूरी दिशा प्रकाशित हो रही है ज्ञान के प्रकाश से।
पुनः राइट टर्न हो, स्थित हो जाए सुंदर स्वमान में कि मैं टावर ऑफ माइट हूं, शक्ति स्तंभ इस दिशा में दूर दूर तक सभी शक्तिहीन आत्माओं को शक्ति प्रदान करें। मैं शिव शक्ति हूं, मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, इस दिशा में सर्व आत्माओं को शक्ति प्रदान कर रही। पुनः राइट टर्न हूं, मैं टावर ऑफ प्यूरिटी पवित्रता का स्तंभ इस दिशा में प्रकृति के पांचों तत्वों को पवित्र प्रकंपन प्रदान कर रही। मेरे प्रकंपन पूरी प्रकृति को पांचों तत्वों को पावन कर रहे। और बाबा को देखते हुए, बाबा से दृष्टि लेते हुए दिल से बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे कि प्यारे बाबा हमें इतना ऊंच श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करने के लिए, इतना श्रेष्ठ जीवन प्रदान करने के लिए, हमें सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए दिल से आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
भाई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये भाई जी की बहुत बड़ी विशेषता है कि जब भी मिलते हैं तो एक नए चिंतन के साथ। आज भी जो अव्यक्त ज्ञान रतन थे उसको गहन चिंतन के सूत्र में पिरोकर एक नवीनतम विधि से विषय का स्पष्टीकरण किया। समय की पुकार क्या कहती है वो स्मृति हम सबको दिलाई। बाबा से कैसे गहरा कनेक्शन जोड़ना है वो विधि हम सबको सिखाई। तो हम सब एक हाथ की ताली से भाई जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद है।